विक्रांत और जीवन अंदर आए। जमाल ने उन्हें देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रांत उसकी टेबल के पास आकर रुका और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। जमाल चौंका नहीं। जीवन बोला, तुम पास हो गए। विक्रांत ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पुलिस के पास जा सकते थे, हमारे दुश्मनों के पास जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब तुम वफादार हो। उसने सूटकेस खोला, अंदर सिर्फ कागज थे, ना कोई सीक्रेट फाइल, ना कोई गैरकानूनी सामान। जमाल ने पहली बार गहरी सांस ली। विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, असल खेल अब शुरू होगा। जैसे ही सानवी रेस्टोरेंट पहुंची, नजर सीधे काउंटर के पास खड़ी रिया पर जाकर रुकी। रिया, सानवी ने पूछा, क्या आकृति वापस आ गई? रिया ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, कल भी नहीं आई। सानवी का चेहरा सख्त हो गया, उसने कड़वी सी सांस ली, वो रात भी घर नहीं आई। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, सानवी बड़बड़ाई, ना फोन उठाती है ना कुछ बताती है। उसने तुरंत मोबाइल निकाला और कृति को कॉल लगाया। उसी वक्त कृति इंदर की हेल्प कर रही थी। इंदर को चोट लगी थी इसलिए उसे छुट्टी दे दी गई थी और वो घर आ गया था। कृति ने फोन निकाला, स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल सानवी। उसने वापस कॉल लगा दिया। उधर सानवी ने जैसे ही फोन उठाया, उसकी आवाज में गुस्सा फूट पड़ा, कहाँ थी तुम? दो दिन हो गए घर नहीं आई, फोन बंद, तुम्हें जला भी अंदाजा है मैं कितनी परेशान थी। कृति चुप रही, फिर धीरे से बोली, दीदी मैं इंदर के घर में हूँ। इंदर? सानवी चौकी, वहां क्यों? कृति ने आवाज नीचे कर ली, इंदर को चोट लग गई है, उसे आज छुट्टी मिल गई थी इसलिए मैं यहां रुक गई थी। ज्ञान अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था, सामने सेटलमेंट की फाइल खुली थी। उसके ठीक साइड में न्यारा खड़ी थी, टैबलेट हाथ में, हर बात नोट कर रही थी। आजकल वो ज्ञान को इस केस में असिस्ट कर रही थी। दरवाजा खुला, स्मृति मेहरा अंदर आई। ज्ञान ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, प्लीज बैठिए स्मृति जी, कुणाल की तरफ से जो ऑफर। स्मृति ने बिना बैठे ही पूछा, बताइए कितनी रकम है? ज्ञान ने फाइल की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, उसने 30 लाख ऑफर किया है। बस यहीं बात रुक गई। वॉट? स्मृति की आवाज अचानक तेज हो गई, उसने टेबल पर हाथ मारा, 30 लाख? आप मजाक कर रहे हैं ज्ञान कपूर? ज्ञान ने संयम नहीं खोया, स्मृति जी प्लीज शांत। नहीं, स्मृति ने बीच में काट दिया, मुझे शांत रहने की जरूरत नहीं है, ये सेटलमेंट नहीं भीख है। वो कुर्सी खींचकर बैठी मगर बैठने में भी गुस्सा झलक रहा था। आपको लगता है कि मैं 30 लाख लेकर अपना केस खत्म कर दूंगी? ज्ञान ने गहरी सांस ली, मैं आपका वकील हूँ, कुणाल ने जो ऑफर थी वो बताना मेरा काम था, हमारा केस कोर्ट में जाएगा इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मृति की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ गई, वो आगे झुकी, आवाज धीमी लेकिन तीखी थी, कोर्ट में ही मिलेंगे। और न्यारा ने अनजाने में सिर उठाया, कमरे की हवा और भारी हो गई। स्मृति ने एक एक शब्द तोलकर कहा, मेरे पास कुणाल मेहरा के ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जो अगर बाहर आ गए तो नुकसान सिर्फ मेरा नहीं होगा। और एक बात साफ कर दूं, स्मृति ने दोबारा ज्ञान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। ज्ञान ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए आपको? स्मृति की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों भुले थे, मुझे जवाब चाहिए, मुझे ये साबित करना है कि वो खुद को जितना शरीफ दिखाता है असल में है नहीं। ये केस मेरे लिए सिर्फ सेटलमेंट नहीं है, ये इंसाफ है। न्यारा पहली बार बोली बहुत संभल कर, अगर आप चाहें तो हम ऑफर रीनेगोशिएट। स्मृति ने उसकी तरफ देखा, फिर नरमी से कहा, नहीं, अब बात पैसों से बहुत आगे निकल चुकी है। वो उठी, अपना बैग उठाया, कुणाल से कह दीजिए 30 लाख वापस भेजकर वो खुद को बचा नहीं सकता। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने आखिरी बार कहा, अगली मुलाकात कोर्ट में होगी और तब कोई सेटलमेंट टेबल पर नहीं होगी। दरवाजा बंद हुआ, कमरे में सिर्फ ज्ञान और न्यारा रह गए। ऑफिस से निकलते वक्त न्यारा खुद को रोक नहीं पाई, सर ये सिर्फ तलाक का केस नहीं है, है ना? क्योंकि न्यारा देख रही थी, उसने सेटलमेंट की बात आगे नहीं बढ़ाई थी। नहीं नायरा, ये ईगो, बदले और राजों का केस है। तो क्या वो सच में? न्यारा रुक गई। ज्ञान ने गहरी सांस ली, अभी स्मृति गुस्से में है, गुस्सा ठंडा भी पड़ता है, थोड़ा वक्त दो, शायद उसका मन बदल जाए या कुणाल खुद को ही समझदारी दिखा दे। अगले दिन ऑफिस में अजीब सी बेचैनी थी, ज्ञान कपूर कोर्ट के लिए निकल चुका था। दोपहर करीब 2:30 बजे रिसेप्शन से फोन आया, सर कुणाल मेहरा आए हैं। न्यारा ने सिर उठाया। न्यारा मीटिंग रूम में उससे मिलने जाती है क्योंकि ज्ञान ऑफिस में नहीं था और न्यारा इस केस ज्ञान कपूर को असिस्ट कर रही थी। न्यारा उसे बहुत सब सच सच बता देती है जो तुम स्मृति ने कहा था, आपकी वाइफ ने सेटलमेंट से मना कर दिया, वो कह रही थी कि आपके कुछ ऐसे सच हैं जिनसे आप टूट सकते हैं। न्यारा ने बेहद संभल कर कहा, बस यही एक लाइन। वो बिना कुछ कहे उठा और चला गया। शाम तक खबर आग की तरह फैली, कुणाल मेहरा ने आत्महत्या की कोशिश की, वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जान बच गई लेकिन कुणाल बेहोश था। ऑफिस में सबका ध्यान एक ही बात पर टिक गया, उसने आखिरी बार न्यारा से मुलाकात की थी। न्यारा के हाथ ठंडे पड़ गए, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस डर और पछतावा, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो खुद से ही बुदबुदाई। ज्ञान कपूर जब ऑफिस लौटा तो माहौल बदला हुआ था, चुप्पी सवाल पूछ रही थी, उसे सब बता दिया गया। न्यारा को केबिन में बुलाया गया, उसने एक एक बात सच सच बता दी, कैसे बातों में बात निकल गई और कैसे एक लाइन ने सब उलट दिया। ज्ञान बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला धीमे लेकिन भारी लहजे में, नायरा क्लाइंट की पर्सनल बातें हमारी जिम्मेदारी होती हैं, हम कानून संभालते हैं, जिंदगियां नहीं तोड़ते। न्यारा की आंखें भर आईं, सर मेरा इरादा इरादे से ज्यादा असर मायने रखता है। ज्ञान ने बात पूरी की। एक सही नीयत भी अगर गलत वक्त पर बोले तो किसी को खाई में धकेल सकती है। कमरा बिल्कुल शांत था। पूरे ऑफिस में जो चर्चा चल रही थी कि ज्ञान कपूर न्यारा पर गुस्सा होंगे और उसे निकाल देंगे, क्योंकि मीडिया में ये बात चल रही थी कि वो आखिरी बार बुक के डेस्टिनी के ऑफिस गया था और उसके बाद ही उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। इस केस से की डेस्टिनी की भी बदनामी हो रही थी। न्यारा धीरे धीरे सीढ़ियां उतर कर बाहर आई। उसके कंधे झुके हुए थे, चाल में बोझ था, चेहरे पर थकान से ज्यादा परेशानी थी, ऐसी परेशानी जो आंखों से पहले दिल में बसती है। वो बड़े से गेट के पास रुकी। ऑटो और टैक्सी की लाइन लगी थी। वो हाथ उठाने ही वाली थी कि सामने से एक गाड़ी आकर धीरे से उसके पास रुकी। खिड़की नीचे हुई। ज्ञान कपूर। उसने न्यारा को देखा और समझ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, पलकें लाल थी, शायद वो वॉशरूम में रो चुकी थी। चुपचाप आओ, ज्ञान कपूर ने शांत आवाज में कहा। बैठो। न्यारा ने कुछ कहे बिना गाड़ी का दरवाजा खोला और बैठ गई। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। गाड़ी चल पड़ी। फिर ज्ञान कपूर बोला बिना उसकी तरफ देखे, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? न्यारा ने खिड़की की तरफ देख लिया। उसकी आवाज नहीं निकली। ज्ञान कपूर ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, कोर्ट में भावनाएं और वकालत साथ नहीं चलती। या तो तुम एक अच्छी वकील बनोगी या फिर हर केस अपने दिल पर लोगी। न्यारा की आंखें फिर भर आईं। अब जो हो चुका है, ज्ञान ने आवाज थोड़ी नरम की, उसके लिए रो मत। उसने गाड़ी थोड़ी धीमी की। अब सोचो आगे क्या करना है। न्यारा ने पहली बार सिर हिलाया, छोटा सा लेकिन मजबूत इशारा। शाम की हवा गाड़ी के अंदर भर रही थी। दिन खत्म हो चुका था, लेकिन उसके लिए ये एक नया सबक था। न्यारा घर पहुंची तो बाहर की दुनिया जैसे वहीं छूट गई। दरवाजा बंद होते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। ना कपड़े बदले, ना आईना देखा, ना चाय बनाने की सोचाई। वो बस बेड पर ऐसे ही लेट गई, सीधी, बिना तकिए के।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और व्यू देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं, तो प्लीज कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सुझाव देते रहिए।